नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। राम मंदिर ट्रस्ट ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अपील की है कि वो जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आएं। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने ये जानकारी दी। चंपत राय ने कहा, आडवाणी और जोशी परिवार के बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को समारोह में शामिल होंगे। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सकारात्मक एजेंडा तय करने, सीट के बंटवारे, नए सिरे से रणनीति बनाने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा संभव है। ये बैठक दोपहर 3 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगी। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इन याचिकाओं में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों की तरफ से वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई थी। देश के दक्षिण राज्यों में बारिश का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री नीचे 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। वहीं उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन भेजा है। ईडी ने उन्हें कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 राज्यों के चुनाव के दौरान पेश होने के लिए समन भेजा था। तब वो चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि केजरीवाल 19 दिसंबर को एक अज्ञात स्थान पर 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। चीन के गांसू किंघई सीमा क्षेत्र में सोमवार देर रात आए भूकंप के बाद कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 से अधिक घायल हो गए। मंगलवार को चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट ने ये जानकारी दी। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। EMSC ने कहा कि भूकंप 35 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका केंद्र गांसू की प्रांतीय राजधानी लांझू से 102 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में था। आधिकारिक रिपोर्टों में ये नहीं बताया गया है कि भूकंप के बाद कोई लापता व्यक्ति है या नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्र उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से गोवा की मुक्ति के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, और साथ ही उन्होंने इस खूबसूरत राज्य के निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गोवा मुक्ति दिवस 1961 में राज्य को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गोवा मुक्ति दिवस पर देश उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हम स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे सशस्त्र बलों का उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए सलाम करते हैं। मैं इन खूबसूरत राज्य के निवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।